वेदवला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहं नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वर्जायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, णमियूणणन्तजिणम् अनन्तनाणेन दिष्ठसौवर्ठं कम्मपदेशविहत्तिम् जहागमं पयलो। यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुल तथा चुम्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिउषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 35 पर आ गए। 35 हम अंतर की बात देख रहे थे, जघन्य विभक्ति में अंतर। गुणस्थानों में ने ओघ से देखने के बाद हमने मार्गणा में देखना शुरू किया था, और कलम ने मनुष्यों की भी बात देखी थी। तो मनुष्य के बारे में जो बताई हमने वहां पर बताई है, उसका विशेषार्थ बताते हैं। 35 पृष्ठ पर विशेषार्थ। सामान्य मनुष्य आदि तीनों प्रकार के मनुष्यों में मिथ्यात्व 11 कषाय और 9 कषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति अपनी अपनी क्षपणा के अंतिम समय में होती है। जब तीन प्रकार के मनुष्य कहे, सामान्य आदि कौन से लेना?
सामान्य मनुष्य पर्याप्त, हाँ, और मनुष्यनी।
सामान्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी, उनको योनिमति। पर मनुष्यनी शब्द आता है, ऐसे योनिमति भी कहते हैं, परंतु तीरियंचों के लिए खास वो शब्द आता है योनिमति। ऐसे कर्मकांड के भाषांतर में उन्होंने योनिमत मनुष्य भी कहा है। इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल संभव न होने से उसका निषेध किया है। मात्र मनुष्यनियों में पुरुष वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति अध: प्रवृत्त करण के अंतिम समय में होती है। इसलिए यहाँ इसकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय संभव होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। एक समय के लिए अंतर पड़ा, किस में पड़ेगा? अजघन्य में पड़ेगा। जघन्य में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उक्त तीनों प्रकार के मनुष्यों में, देखो ये समझ में नहीं आए उसकी अपेक्षा तो पूछना। वो पुरुष वेदी वाले के लिए, हाँ,
नवक समय।
अभी वहाँ नवक समय प्रबद्ध की अंतिम फाली खेलती है, क्योंकि क्या है,
नहीं वो वाला तो मिनिमम है, पुरुष वेद में तो एक मिनिमम,
वो पुरुष वेद के लिए मिनिमम है, स्त्री वेद के लिए मिनिमम अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होता है। नपुंसक वेदी के लिए भी वो वही जो पुरुष वेद की बात है, क्योंकि स्त्री वेदी की बात जो है ना, मनुष्यनियों में मनुष्यनी है तो उसका उदय स्त्री वेद के उदय से ही चल रहे हैं। तो जब स्त्री वेद की क्षपणा पूरी होती है,
बंद भी रुक
जाए तो बंद तो रुकेगा, परंतु पुरुष वेद में सारा संक्रमित होता है, यानी उसका पुरुष वेद का जघन्य नहीं रहेगा, और उसकी पुरुष वेद की और नवक समय प्रबद्ध की दोनों की क्षपणा चालू रहती है।
तो नवक समय प्रबद्ध का अंतिम फाली गिरेगी तभी मिनिमम द्रव्य हो जाएगा
पुरुष वेद वाले,
पुरुष वेद वाला,
क्योंकि पुरुष वेद वाले का बंध अधिक समय तक लगातार, कि स्त्री वेद का उदय पहले रुक जाता है, पुरुष वेद सहित चलने वाले का वेद का उदय और लंबे काल तक चलता है।
मनुष्य में छह वेद, अरे छह नौकरशाही और पुरुष वेद का
एट ए टाइम चलता है। हाँ। उक्त तीनों प्रकार के मनुष्य में नीचे से छठी लाइन, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की, अजघन्य प्रदेश विभक्ति का, जघन्य अंतर एक समय, ये तो उद्वेल ना में लेना, अजघन्य का जघन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर, पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक अधिक तीन पल्ल्य, उद्वेल ना की अपेक्षा बन जाता है। यानी इतने लंबे काल के बाद बीच में उसने समय तो नहीं प्राप्त किया था,
अंत में जाते
तो उत्कृष्ट स्थिति लेना, शुरू में एक बार किया और लास्ट में एक बार किया, तो पृथक्त्व पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ल्य, पहले भव में प्राप्त कराना, इन्हें उद्वेल ना करानी उसकी, समय तो नहीं प्राप्त। सारी मिथ्या दृष्टि वो उद्वेल ना करते करते आया है, एक समय के लिए उसका सत्व था नष्ट हो गया, फिर जाके तीन पल्ले के अंत में उसने सम्यक को प्राप्त किया। हाँ, जो पूर्व पृथक तो पूर्व कोटि सब लेना उसने, सामान्य की बात होगी, पर्याप्त की है स्त्री की यानी मनुष्य ने की, उसकी अपेक्षा वो पृथक्त्व का प्रमाण बदलेगा, तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की, अजघन्य प्रदेश विभक्ति का, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, यानी अजघन्य था विसंयोजना के द्वारा नष्ट हुआ, एक अंतर्मूर्त में फिर मिथ्यात्व में आ गया, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्य विसंयोजना की अपेक्षा बन जाता है। देखो, जब हमें अनंतानुबंधी के अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर देखना है तो लंबे काल तक सम्यक दृष्टि रखना उसको, तो वो तीन पल्ले वाली उत्कृष्ट आयु ले नाइक भाव, तथा संज्वलन लोभ की, मनुष्य है ना अभी, तो संज्वलन लोभ का जघन्य कहाँ देखा था हमने, अध प्रवृत्तकरण के अंतिम से, परंतु वो भी क्षपना शुरू हो गई उसकी, है ना, क्षपक श्रेणी के मारने का भी वो चालू कर दिए उसने, करण शुरू हो गई उसके, तो ये तो फिर दोबारा जघन्य होने का सवाल नहीं है, एक बार हुआ तो दोबारा जघन्य होने का सवाल नहीं है, इसलिए जघन्य का अंतर नहीं है कहेंगे। क्या क्या फिर से संज्वलन लोभ की नहीं, लोभ की जो देखना है, लोभ तो दसवें के अंत में चला जाएगा, परंतु उसकी जघन्य कब होती है, तो जो अन्य उसमें अभी नहीं संक्रमित हुए हैं तब लेना उसको, इसलिए उसको चार बार उपशमाने का अन्य क्षपित कर्मौशिक में बताया था, इसको तो बताया कि इसको उपशम श्रेणी पर चढ़ाना ही नहीं, क्षपित कर्मौशिक के विधि से आकर डायरेक्ट क्षपक श्रेणी चढ़ाना है, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने में उसके गुण संक्रमण होता है पूर्वकरण गुणस्थान में, तो वहां तो अन्य जो कर्म है, अन्य जो संज्वलन है वो इसमें, वो तो बाद में, वो अनिवृत्तिकरण में ट्रांसफर होती है, ये अधप प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में, अधप प्रवृत्तकरण उसने सातिशय अप्रमत्त में किया है, और बाद में अपूर्वकरण शुरू हुआ, अपूर्वकरण से क्या होता है गुण संक्रमण, अपूर्वकरण कहीं भी हो क्या क्या बातें होती है, एक तो स्थिति कांड घात होता है, अनुभव कांड घात होता है, गुण संक्रमण होता है, गुण श्रेणी होती है, तो वहाँ गुण संक्रमण के द्वारा लोभ में बहुत सारा माल आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये जीव जो लिया है वहाँ पे संयम और संयम लंबे पल्ले का संख्या के पास के कम में कम लेना पड़ेगा,
क्यों,
क्योंकि वहाँ पे भी गुण संक्रमण चलेगा ना, जब वहाँ पे भी अपूर्वकरण होगा,
कहाँ पर अपूर्वकरण
नहीं, अच्छा अच्छा वहाँ पे तो श्रेणी की बात,
मात्र गुण श्रेणी होती है, हाँ। अपूर्वकरण तो बार बार नहीं होता, जब नहीं। तीन करण होते हैं तभी होते,
तभी होते,
सातवें अप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त, अभी वो श्रेणी के नेक्स्ट समय में श्रेणी आठवां गुण स्थान होगा उसका, ऐसा जीव लिया सातवें का अंतिम समय। परंतु सातवें केवल सातवें का अंतिम समय नहीं कहना, क्योंकि छठवें में आने वाला भी सातवें का अंतिम समय कहलाएगा, ऊपर जाने वाला सातवें का अंतिम समय,
आठवें के सन्मुख,
हाँ शपक श्रेणी के सन्मुख, हाँ अंतिम समय। अद प्रवृत्त करण यानी वो नॉन रिवर्सिबल है अभी प्रोसेस, अभी वो तो क्षपक श्रेणी चढ़ना शुरू करेगा ही दूसरे समय में। तथा संज्वलन लोक की जघन्य प्रदेश विभक्ति यहाँ क्षपणा के अंतर्मूर्त पूर्व होती है।
नहीं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था कि ये जो हम लोग क्षपित कर्मांशिक देख रहे हैं वो इतने पल्ले के असंख्यात बार संयम प्राप्त करेगा, संयम असंयम
इतने बार,
तो उसका गुण संक्रमण ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा द्रव्य हो जाएगा, ये क्या ऐसे?
आप गुण संक्रमण वहाँ क्यों कह रहे हो बार बार? गुण श्रेणी अलग बात है और गुण संक्रमण
बराबर है, पर पल्ले के असंख्या पे बार वो संयम धारण करेगा, उसके पहले संयम असंयम इतनी बार धारण करेगा, तो वहाँ पे भी गुण संक्रमण होगा। तो ये क्या ये जीव ऐसा लेना है कि क्षपित कर्मांशिक पुरुष आया है और स्ट्रेट इन क्षपक श्रेणी चढ़ गया है?
देखो क्षपणा में जो संक्रमण होता है या श्रेणी में वो अनुपूर्वी संक्रमण होता है,
हाँ।
और अन्यथा जो संक्रमण होता है कोई भी कषाय किसी में भी परिवर्तित हो सकता है।
अच्छा, उल्टा
लोभ भी माया मान में चला जाएगा, हाँ। उसकी बात यहाँ नहीं लेनी, वो तो आपस में संक्रमित होते रहते हैं। हमें तो श्रेणी में जो संक्रमण होता है जिसको अनुपूर्वी संक्रमण कहते हैं, यानी क्रोध है वो मान में ही जाएगा, मान माया में ही जाएगा, माया लोभ में ही जाएगा, वैसा संक्रमण पूर्व अवस्था में नहीं,
नहीं।
ये संक्रमण तो क्या देंगे जो अभिव्यक्त
करेंगे यथा तथा, जैसे हम पूर्वानुपूर्वी पश्चातानुपूर्वी ऐसे भी हमने देखा था ना, अनुपूर्वी नहीं क्रम से। तो यहाँ तो क्षपणा नियम से अंतर्मूर्त में होने वाली दसवें गुण स्थान के अंत में, और ये अधप्रवृत्तन का अंतिम समय है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। यानी जब इसका जघन्य होता है एक समय के लिए
अजघन्य का अंतर,
तो अजघन्य का एक समय का अंतर घटित होता है, इसके पहले भी अजघन्य था बाद में भी अजघन्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी आएगा ना अभी और अधिक माल आएगा, उसमें संक्रमण शुरू हो जाएगा। मनुष्य अपर्याप्तों का भंग पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान है, यह स्पष्ट ही है। 36 पृष्ठ पर आया। अब देवगति में देवों में मिथ्यात्व, बारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुसक वेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, जैसे अन्य सर्वत्र हम घटित कर आए हैं, पहले समय में कौन सा जघन्य होगा और लास्ट में जाके कौन सा जघन्य होगा?
मिथ्यात्व पहले समय ही होगा, बारह कषाय भी पहले प्रॉब्लम होगा।
मिथ्यात्व का तो हमने कैसे घटित किया था? क्षपित कर्मांशिक से आया है, वहाँ सम्यक तो प्राप्त किया है और अंत में जाकर
अंतिम समय में होगा।
सम्यक पर रखना उसका, हाँ। अंतिम समय में,
हाँ। बारह कषाय का भी ऐसे ही होगा,
बारह कषाय का भोग के पहले समय में होगा, बारह कषाय उसका तो बंद है समय को, हाँ। होने पर भी, इसलिए बारह कषाय को क्षपित कर्मांशिक से आए हुए जीव के भोग के पहले समय में लेना। हमने नारके में भी ऐसा देखा था, तिर्यंच में भी ऐसा ही देखा था। तो मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुसक वेद तो भव के अंतिम समय में देखा हमने, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा भव के पहले समय में देखे, और याद है पुरुष वेद और चार आश्चर्य उनको कब देखा था?
अंतर्मूर्त पश्चात,
हाँ, शुरू भव के शुरू के एक अंतर्मूर्त पश्चात। तो जिसके पहले शुरू में है या लास्ट में है उनका अंतर नहीं होगा, अजघन्य का अंतर नहीं होगा, ना ही जघन्य का अंतर होगा, जघन्य का तो किसी में भी नहीं होता है। ख्याल में ये बात क्यों बताना चाहते हैं? इसलिए अजघन्य और जघन्य का अंतर नहीं है।
ये स्त्रीवेद नपुसक वेद का भी लास्ट समय में लेना,
मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुसक वेद एक साथ रखना, बारह कषाय, भय और जुगुप्सा पहले समय में लेना, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। उसके लिए भी हमने देखा था वो क्षपित की विधि से आया है, याद है, क्षपित कर्मोशिक से आया है, फिर वे सम्यक को प्राप्त किया और दो बार 66 सागर तक रहकर अंत में उसकी जघन्य हो जाती। ऐसे लिया था ना सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का, कैसा लिया था? क्षपित कर्मोशिक से आया तो मिथ्यात्व का जघन्य था, सम्यक तो प्राप्त किया, दो बार 66 सागर तक रहकर लास्ट में उसका कि बाद में उसको फिर मिथ्यात्व में लाना था। नहीं नहीं, दीर्घ उद्वेलना काल ऐसा कुछ लिया था।
हाँ, उद्वेलना में लास्ट
दीर्घ उद्वेलना काल लिया था। कल हमने कहीं पढ़ा था ना, इसमें लिख के भी रखा था सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में। ये दीर्घ उद्वेलना काल ही लिखा, 33 पेज पर आया था ये। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं, ये लिखा था सेकंड लाइन में। और उसमें यही बात देखी थी, क्षपित कर्मोशिक विधि से आया है और दीर्घ उद्वेलना के अंतिम समय में, 389 पर देखा था इसमें। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का, क्षपित कर्मोशिक जीव मिथ्यात्व में गया और दीर्घ उद्वेलना के द्वारा, यहाँ तो नारकियों में घटित किया है परंतु ऐसे ही सब लेना, जो उद्वेलना का अंतिम समय आता है। अब यहाँ हम गति में ले रहे हैं ना, देव गति में हम ले रहे हैं। तो क्षपित कर्मोशिक की जो विधि घटित होती वो पहले सब घटित कराना, फिर देव में आया है वो। वहां भी ऐसे कहते हैं, कर सकते हैं ना, समय को प्राप्त किया, लंबे काल तक रहा, अभी दो 66 सागर तो नहीं परंतु
यथायोग्य।
हाँ, यथायोग्य।
और पहले के असंख्यात में भाग पहले उद्वेलना चालू कर दी। हाँ, और अंत में जाके उद्वेलना,
अंत में जाके उद्वेलना, यानी दीर्घ उद्वेलना काल लेना उसका, नवे ग्रहवेग में घटित कर सकते। उद्वेलना दीर्घ उद्वेलना से उसका अंतिम समय लेना फिर, परंतु उसका अंतर नहीं होगा।
अंतर एक भव में,
एक बार एक भव की बात नहीं, दूसरे
कभी
भी कभी अंतर नहीं होगा, अन्य भी किसी भव में फिर उसका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्षपित से आया है ना वो, उसकी सारी कंडीशंस फिर दोबारा नहीं हो सकती। अभी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में ही अजघन्य प्रदेश विभक्ति का, जब इन दोनों में अजघन्य सोचना है तो उद्वेलना की अपेक्षा सोचना है, तो उसका जघन्य अंतर कितना होगा?
एक समय,
एक समय कैसे होगा? एक समय छोड़कर सम्यक को प्राप्त किया प्रथम उपचार, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर, एक ही भाव रखना है
उद्वेलना की और अंत में।
हाँ, तो सादी मिथ्या दृष्टि हुई लाना यहाँ पर, एक समय बाकी था उद्वेलना में
और अंत में
उद्वेलना पूरी की और जाके भाव के अंत में उसने
सम्यक तो प्राप्त,
सम्यक तो प्राप्त। अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि जघन्य तो वही क्षपित कर्मोशिक में घटित होगा, अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अनंत अनुबंधी में अजगन्य के लिए विसंयोजना की और बाद में फिर संयोजना, तो मिनिमम सम्यक्त्व का काल उसका अंतर्मूर्त है, और मैक्सिमम अगर घटित करना है तो उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर है, क्योंकि देव इन जनरल बात कर रहे हैं। हर एक जहां अपने अपने स्वर्ग की बात करेंगे तो अपने अपने स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में कुछ कम लेना। कुछ कम कैसे घटित करेंगे? शुरू में, हाँ यानी शुरू में अंतर कैसे शुरू किया उसने? आप कहेंगे
अनंतानुबंधी
का अंतर वहाँ उत्पन्न हुआ,
सम्यक्त्व प्राप्त हुआ
और फिर वहाँ पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना की।
हाँ।
सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न करा ना, वहाँ विसंयोजना वहाँ जाके की उसने, वेदक सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न हुआ, विसंयोजना की
और अंत में जाके वापस
समय दृष्टि रहा थ्रू आउट, और लास्ट में उसने संयोजना की, मिथ्यात्व में गया। इस तरह वहां जाने पर विसंयोजना करनी चाहिए। हाँ, पहला छोड़ना और लास्ट का छोड़ना। ये हो गया पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर नहीं है, क्योंकि जघन्य तो होता है एक ही बार, जो अंतर्मूर्त जन्म होने के बाद अंतर्मूर्त के पश्चात होता है। अजघन्य के लिए अंतर पड़ेगा एक समय वाला। सभी प्रकृतियों में सोचते हैं हम, हाँ क्षपित कर्मांशी वो तो कंडीशन है ही, परंतु मिथ्यात्व के बारे में फिर लाना, समय तो प्राप्त करके अंत में लेना, वो तो अलग सोचना। यानी मिथ्यात्व और दो वेद वो भव के अंत में हो गए, 12 कषाय और हमने देखे थे शोभय और जुगुप्सा भव के शुरू में हो गए। अनंतानुबंधी समय समय मिथ्यात्व का अलग ही तरीका है, और जो पुरुष वेद और चार है उसको एक अंतर्मूर्त के पश्चात, उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त पश्चात जघन्य होता है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष का बंध करता है ऐसा जीव लेना। अभी विशेषार्थ इसी का, देवों में मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुसकवेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति भव के अंतिम समय में, ये अभी हमने देखा था, तथा 12 कषाय और भय जुगुप्सा की जघन्य प्रदेश विभक्ति भव ग्रहण के प्रथम समय में होती है। वह अंतिम समय लिया, ये प्रथम समय, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध किया है। यहाँ बराबर लिखा है, पहले हमने वो करेक्शन किया था ना विशेषार्थ में, उन्होंने मिथ्यात्व आदि सभी 8 को इकट्ठा लिया था, अभी ये कथन बराबर है। इसलिए इनकी अजगण्य प्रदेश विभक्ति के अंतर काल का निषेध किया है, शुरू में हो या अंत में हो, एक समय जो लास्ट में है या पहले ही समय में है, तो बाकी सब उसका
अंतर हो गया,
अंतर नहीं होता, न जगन्य का होता ना अजगण्य का होता। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होकर क्या हुआ, कुछ कहा नहीं? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होकर पुनः सत्व तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना होकर पुनः सत्व अंतिम ग्रेवेक तक ही संभव है, क्योंकि वहां पर चारों गुण स्थान हो गए, ऊपर तो सारे सम्यक दृष्टि है, आगे सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं होती, और अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना तो होती है पर उन जीवों का नीचे गिरना संभव नहीं होने से पुनः सत्व नहीं होता। विसंयोजना होती है परंतु दोबारा मिथ्यात्व में आने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए संयोजना होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए इन 6 प्रकृतियों की अजगण्य प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर कहा है। इनमें से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और अनंतानुबंधी चतुष्क की अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त ही स्पष्ट है, क्योंकि वहां तो उद्वेलना वाला लेना एक समय के लिए सत्ता नहीं थी और फिर हो गई सम्यक्त्व के कारण। विसंयोजना में सम्यक दृष्टि रहा अंतर मुहूर्त तक, बाद में मिथ्यात्व में गया। देखो ये ख्याल में रखना, विसंयोजना होते ही कोई दूसरे समय में या तीसरे समय में मिथ्यात्व में नहीं जाता, अंतर मुहूर्त तो सम्यक दृष्टि रहेगा ही। यहाँ पुरुषवेद आदि की आदि में किसको लेना,
आश्चर्यति
शोकरति। जघन्य प्रदेश विभक्ति भव के प्रारंभ में अंतर्मूर्त काल जाने पर प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध के अंतिम समय में होती है। इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय संभव होने से वह उक्त काल प्रमाण कहा गया है। भवनवासियों से लेकर उपरिम ग्रेविक तक के देवों में मिथ्यात्व बारकषाय स्त्रीवेद नपुसकवेद भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। जैसे हमने सर्वत्र देखा, क्योंकि मिथ्यात्व नपुसकवेद स्त्रीवेद तो भव के अंतिम समय में, बारह कषाय वही जुगुप्सा भव के पहले समय में, इसलिए अंतर घटित नहीं होगा। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि उसमें भी वो कंडीशन हमने देखी थी, दीर्घ उद्वेलना वगैरह वगैरह लगाना है, अंतर नहीं हुआ। जघन्य होगा परंतु अंतर नहीं होगा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर क्रम से ने सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के लिए
एक समय
और अनंतानुबंधी के लिए अंतर्मोर तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में उद्वेलना कराना एक समय रखकर और भव के अंत में सम्यक को प्राप्त कराना, अनंतानुबंधी में
विसंयोजना।
हाँ, तो कौन सा सम्यक दृष्टि लेना
प्रथम?
क्यों
वेदक वेदक सर
क्यों
उसका अंतर्मुख छोटा होता है
तो सम्यक्त्व के साथ लाना कि नहीं लाना?
नहीं, भवन वासी में तो नहीं आएगा।
भवनवासी है तो यहाँ तो वहाँ जाने पर अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कराना। ये कौन सा सम्यक्त्व होता है उससे कुछ नहीं लेना देना
नहीं, वहाँ पे तो वेदक भी हो सकता है।
वेदक हो या प्रथम उपशम हो, दोनों हो सकते। पुरुषवेद हास्य रति अरति और शोक की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि समय एक समय के लिए होती है जघन्य और दोबारा नहीं होती, परंतु अजघन्य का अंतर होगा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है, क्योंकि पहले अंतर्मूर्त तक अजघन्य था, एक समय के लिए जघन्य हुआ, फिर अजघन्य रहा थ्रू आउट। विशेषार्थ, सामान्य देवों में सब प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल को जिस प्रकार घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में 28 प्रकृतियों की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि हास्य रति अरति और शोक प्रकृति का भंग आनत कल्प के समान है, यानी नीचे के देवों समान।
यह पुरुषवेद का नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पुरुषवेद का ही बंद होता है।
हाँ, पुरुषवेद का ही बंद होगा, इसलिए पुरुषवेद का प्रतिपक्ष के बंद की बात वहाँ लागू नहीं होगी। इस प्रकार अनाहार मार्गणा तक ले जाने पर अंतरकाल समाप्त होता है। विशेषार्थ, मिथ्यात्व आदि कुछ प्रकृतियों की भोग के अंतिम समय में और कुछ की बहु के प्रथम समय में जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल संभव नहीं होने से उसका निषेध किया है। मात्र हास्य आदि चार प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति पर्याय ग्रहण के अंतर्मूर्त बाद होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय प्राप्त होने से वह उक्त काल प्रमाण कहा है। इस प्रकार अंतरकाल समाप्त हुआ, ये अंतर वाली प्ररूपणा समाप्त हुई। पहले हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट देखा, अब जघन्य अजघन्य देखा। एक जीव की अपेक्षा अभी तक हमने स्वामित्व देखा, काल देखा और अंतर देखा, अब नाना जीवन की अपेक्षा बात चलेगी। ऊपर सूत्र पढ़ते हैं, नाना जीवे ही भंग विचयो दुविहो जहन नुक्कस भेदे ही अट्ठपदम कादुन सव कम्माणम नेदवो। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट के भेद से भंग विचय दो प्रकार का है। सो इस विषय में अर्थपद करके सब कर्मों का ले जाना चाहिए। अर्थपद ने उसका जो कोई स्टेटमेंट करेंगे, पहले बताएंगे कोई रूल नियम बताएंगे और वो सभी में लागू होगा। यह सूत्र देशामर्शक है, इसके उच्चारणाचार्य कृत व्याख्यान का कथन करते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसमें यह अर्थपद है। जो 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीव है, वे उनके अनुत्कृष्ट प्रदेश अविभक्ति वाले हैं। आप कहेंगे ये बताने की क्या जरूरत है, जो उत्कृष्ट वाला है उसी समय वो अनुत्कृष्ट वाला नहीं हो सकता। तथा जो अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव है, वे उत्कृष्ट प्रदेश अविभक्ति वाले हैं, उसके अविभक्ति वाले ऐसा कह दिया। यहाँ विभक्ति वाले जीवों का प्रकरण है, क्योंकि अविभक्ति वालों का व्यवहार नहीं है। इस अर्थपद के अनुसार निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। अब उसमें पॉसिबिलिटीज बताएंगे कि ओह से कदाचित सब जीव 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश अविभक्ति वाले हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, कदाचित अविभक्ति वाले बहुत जीव है बाले हुआ और विभक्ति वाला एक जीव है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी नहीं, अभी दूसरी। अविभक्ति वाले बहुत जीव है और विभक्ति वाले बहुत जीव है। थर्ड, तीन नंबर रह गया, वहाँ लिखना चाहिए। कदाचित अविभक्ति वाले बहुत जीव है और विभक्ति वाले जीव बहुत जीव है, यहाँ तीसरा। हाँ, चौथे लाइन में देना है ना? ये फुल स्टॉप देने के पहले तीन नंबर लिखना। ख्याल में आए कहाँ तीन नंबर देना? देखो, चौथी लाइन में बहुत जीव है लिखा है ना, चौथी लाइन में बहुत जीव है, मिला
तीन शब्द
ऊपर से चौथी लाइन, और भी लिखा है ना, पूरा वाक्य नहीं हुआ है, और बहुत जीव है, वो दंड जो है फुल स्टॉप, उसके पहले तीन नंबर देना। ऊपर प्राकृत में देखो तीसरी लाइन, सिया अभिहत्या विहत्या च, वहाँ तीन नंबर लिखा है वहाँ पर भी, वो यानी कुछ, हाँ कदाचित है और ये भी बहुत है और वो भी बहुत है, यानी कदाचित सिया तो हर एक की जगह लगाया, मतलब विहत्या और विहत्या अविहत्या लिखा। देखो सेकंड में क्या लिखा था, सिया अविहत्या यानी अविभक्ति वाले बहुत है, और विहत्यो ओ का अर्थ होता है सिंगल एक वचन, विहत्यो च लिखा है ना, यानी एक जो विहत्ति वाला है। और तीसरे में क्या लिखा, दोनों के लिए अनेक वचन लिखा, अविहत्या और विहत्या, ये तीसरा भंग हुआ। तीनों में कौन से कॉमन है,
अविभक्ति वाले उत्कृष्ट के अविभक्ति वाले,
उत्कृष्ट के अविभक्ति वाले तीनों में है, यानी
ज्यादातर उत्कृष्ट वाले कम है, उत्कृष्ट वाले भी
विभक्ति वाले कभी नहीं हो ऐसा भी होगा, क्योंकि उसके लिए सारी कंडीशंस होती है ना, वो निष्कर्मोषिक वगैरह, यानी कभी ऐसा होगा एक भी जीव उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला नहीं है,
कभी एक ही है।
जब हमने स्थिति विभक्ति देखी थी तभी भी ये बात आई थी कि कुछ समयों के लिए बहुत लंबे काल के लिए एक भी जीव न हो ये संभव है, फिर दोबारा उसकी सत्ता हो जाएगी। स्थिति विभक्ति में मुझे याद है 70 कोड़ा कोड़ी वाला एक भी जीव यहाँ चारों गति में नहीं होगा, और ऐसे लंबे काल के बाद फिर उसकी सत्ता हो जाएगी। अंतर में देखा था ना उसकी सत्ता,
बहुत काल बहुत लंबा देखा था ना,
हाँ असंख्यात लोग ऐसा कुछ देखा था, अभी मुझे एग्जैक्ट काल याद नहीं परंतु लंबा काल था,
असंख्यात लोग की देखा,
असंख्यात लोग था ना। यहाँ हम विभक्ति की बात कर रहे हैं और वो स्टेटमेंट अविभक्ति की ओर से पहले हो रहा है, यानी सब जी 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश अविभक्ति वाले हैं, यानी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला एक भी नहीं है, यानी सभी अविभक्ति वाले ऐसा कहा एक नंबर का। दूसरे नंबर पर अविभक्ति वाले बहुत है, विभक्ति वाला एक ही है, और तीसरा पॉइंट
दोनों बहुत है
फिर भी वो अविभक्ति वाले ही बहुत हो गए, ये उसके अनंत विभाग हो गए। अब अनुत्कृष्ट की ओर से कथन है, फिर उसमें भी तीन भंग बताएंगे। पहले उत्कृष्ट की ओर से कथन किया था, अब अनुत्कृष्ट प्रदेशों की अपेक्षा कदाचित सब जीव विभक्ति वाले हैं, यानी अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले सभी हैं, कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले हैं और एक जीव अविभक्ति वाला है। अविभक्ति वाला अनुत्कृष्ट का अर्थ होता है उत्कृष्ट का विभक्ति वाला है, कदाचित बहुत जीव विभक्ति वाले हैं और बहुत जीव अविभक्ति वाले हैं। इसी प्रकार सब नारकी सब तीर्यंच मनुष्यत्रिक और सब देवों में जानना चाहिए। अब मनुष्य अपर्याप्तों को अलग निकाल रहे, क्यों
वहां पे कोई है ही नहीं,
वो तो सांतर मार्गणा है, वो होगे ही नहीं कोई कभी जी। तो मनुष्य अपर्याप्त जीवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के अविभक्ति वाले जीवों के साथ 8 भंग होते हैं, यानी वहां एक अनेक की बात करेंगे हम,
एक भी नहीं है पीछे एक अनेक,
हाँ या इसके अनेक उसका एक होगा, ऐसा हाँ। भी हो सकता है, उल्टा यहाँ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के भी अविभक्ति वाले जीवों के साथ 8 भंग करने चाहिए, इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ 28 प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीवों के भंग कहकर फिर 4 गतियों में वे बतलाए गए हैं। उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति उत्कृष्ट योग से होती है, वह सदा संभव नहीं है, इसलिए कदाचित एक भी जीव उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाला नहीं होता। कदाचित एक जीव उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाला होता है और कदाचित नाना जीव यानी अनेक जीव उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा तीन भंग होते हैं। भंग मूल में ही कहे यानी ऊपर बताए हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा विचार करने पर भी तीन भंग ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कदाचित सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के धारक होते हैं, कदाचित शेष सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के धारक होते हैं और एक जीव
अनुत्कृष्ट धारक नहीं होता,
एक जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का धारक नहीं होता,
उत्कृष्ट वाला हो जाए,
और कदाचित नाना जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के धारक होते हैं और नाना जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के धारक नहीं होते। इसमें भी तीन भंग बताए ना। इसलिए इस अपेक्षा से भी तीन भंग बन जाते हैं। लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों को छोड़कर गति मार्गणा के अन्य सब भेदों में यह ओघ प्ररूपना अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघ के समान जानने की सूचना की है। मात्र मनुष्य अपर्याप्त यह सांतर मार्गणा है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों प्रदेश विभक्ति वालों के अपने अपने अविभक्ति वालों के साथ एक और नाना जीवों की अपेक्षा आठ आठ भंग बन जाने से उनका संकेत अलग से किया है। भंगों की यह पद्धति अनाहारक मार्गणा तक अपनी अपनी विशेषता के साथ घटित हो जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणा तक उक्त प्ररूपना के समान जानने की सूचना की है। यहाँ तो गति मार्गणा में बताया, वैसे हर एक मार्गणा में होगा।
ठीक है, शासादन की अपेक्षा भी आठ भंग होगा, सम्यक विध्यात्व की अपेक्षा भी आठ भंग,
जो जो सांतर है उसमें होगे, सांतर मार्गणाओं में होगे, परंतु वो तो आप गुण स्थानों में घटित कर रहे हैं। अभी वो सम्यक को मार्गणा में हम उसको शासादन और सम्यक विध्यात्व
वैकल्पिक मिश्रण में सांतर ये चार भंग हो जाएगा।
सांतर याद है कौन कौन से, जरा याद करेंगे? हाँ,
मनुष्य अपर्याप्त,
मैं जरा इनको याद करेगा। यहाँ तो एक बताया लब्धि अपर्याप्त मनुष्य सांतर मार्गणा है, ऐसे अन्य कौन कौन सी सांतर मार्गणा आपको याद है? हाँ, वो कौन सी मार्गणा में आ गए? सम्यक्त्व कह रहे आप,
निरंतर मार्ग प्रथम ऑप्शन,
जरा सुनने दो उनको, जरा थोड़ा सोचने दो। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व तो कहा ना आपने, आप प्रकृति के नाम बता रहे। हाँ,
पहले गुणस्थान की अपेक्षा सोचेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा।
अच्छा सोचो, बताओ
दूसरा
दूसरा गुणस्थान तीसरा गुणस्थान कौन से मार्गणा में आते हैं?
तो निरंतर
सम्यक्त्व मार्गणा में।
हाँ,
सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा शासादन और मिश्र ये दो भेद है।
हाँ,
है ना। हाँ, ये तो हो गया, यानी हमने सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा शासादन मिश्र, सम्यक्त्व की मार्गणा की अपेक्षा और कोई है सांतर? हाँ, बोलो। उपशम
सम्यक्त्व, अरे सॉरी,
उपशम प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व हमेशा नहीं होता,
30 दिन या 7 दिन के अंतर से होता
है। हाँ, तो हमेशा नहीं होता।
हाँ,
तो इन्हें ऑप्शन समय तो इतना हाँ, दिया उन्होंने। और
आरक आरक भी
वैकरिक मिश्र,
मिश्र
वैकरिक मिश्र और आहारक।
हाँ,
आहारक भी कौन सा होता है?
अरे आहारक आहारक मिश्र।
हाँ, कौन सी मार्गणा?
संतर मार्गणा।
मार्गणा का नाम क्या है?
अरे हाँ, काई मार्गणा नहीं, काई मार्गणा में ना,
काय मार्गणा में त्रसकाय और सावरकाय पांच होते हैं।
योग मार्गणा,
योग मार्गणा,
योग मार्गणा।
हाँ, यथाकर्ण में तेरवा गुण स्थान निरंतर है,
निरंतर है
नहीं उसकी बात नहीं, हम यहाँ बात सांतर की बात कर रहे हैं,
उपशम श्रेणी वाला और सपक
श्रेणी वाला वो भी अंतर होते हैं। मार्गणा नहीं है वो श्रेणी की, तो मार्गणा नहीं है,
सूक्ष्म संप्राय ले सकते हैं।
हाँ वही तो,
सूक्ष्म संप्राय ले सकते हैं,
सूक्ष्म संप्राय भी निरंतर, वो तो संयम मार्गणा में,
संयम मार्गणा में
इस तरह से हमें सोचना है। परिहार विशुद्धि तो होगी, हमेशा होगी, कोई ना कोई जीव उसमें होगा ही, एक जीव की अपेक्षा अंतर वो बात अलग है, परंतु हमेशा ही कोई ना कोई जीव परिहार विशुद्धि वाले होगे ही होगे, मनो परिज्ञान वाले होगे ही होगे। अंतर तो ये आहारक में पड़ता है, श्रेणी में पड़ता है। तो यहाँ जो हम देख रहे थे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, ये सांतर मार्गणा है, तो ये भी अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए जो कहा है, तो जिस मार्गणा में अंतर है वहाँ ये बात घटित होगी, वहाँ ऐसे भंग होगी वहाँ पर।
मनुष्य की अपेक्षा परिहार विशुद्धि भी हमेशा,
परिहार विशुद्धि हमेशा ही होगी, नाना जीवन की अपेक्षा बात करें ना,
मनुष्य में होगी।
जब हम मार्गणा में सांतर निरंतर कहते हैं, वहां अनेक जीवों की ही अपेक्षा लगती है, अभी हमने उत्कृष्ट का देख लिया, नाना जीवों की अपेक्षा भंग देखे, अब जघन्य का प्रकरण है, क्या जघन्य भी हमेशा हो गए कि नहीं हो गए?
नहीं,
कभी ऐसा होगा ना एक भी जीव जघन्य नहीं है, क्योंकि सपना करने वाले इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के स्थान में जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए, बाकी भंग तो वही होगे, भंगों का कथन तो वैसा ही होगा, क्या सभी अनुत्कृष्ट सॉरी अभी सभी अजघन्य वाले है कहेंगे, अनेक अजघन्य और एक जघन्य है कहेंगे,
अनेक अनेक।
या अजघन्य भी अनेक है और जघन्य भी अनेक है, जघन्य अनेक कहेंगे तो भी संख्या थी होगी, ज्यादा नहीं होगी। 28 प्रकृतियों के जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के 3 भंग होते हैं, अजघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के भी 3 भंग होते हैं, जब जघन्य लगाएंगे तो विभक्ति वाले अविभक्ति वाले कहेंगे, अजघन्य कहेंगे तो उसमें भी विभक्ति वाले अविभक्ति वाले कहेंगे, इसी प्रकार सब नारकी सब तीर्यंच मनुष्यत्रिक और सब देवों में जानना चाहिए, मनुष्य अपर्याप्तकों में जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति की अपेक्षा 8-8 भंग होते हैं, क्योंकि वहाँ कभी कोई जीव होगा ही नहीं, होगा तो क्या होगा,
कोई एक
है वो उत्कृष्ट वाला ही होगा, या जघन्य वाला जो कुछ हमने को कहना उत्कृष्ट वाला होगा, या अनेक उत्कृष्ट वाले हो गए, या एक अनुत्कृष्ट वाला अनेक अनुत्कृष्ट वाला, ये तो सिंगल सिंगल के भंग हुए, अब दोनों के कॉम्बिनेशन आपस में करो,
अनेक एक
इसके एक के साथ उसका एक अनेक और इसके अनेक के साथ उसके एक अनेक, 4 हो गए ना, पहले 4 और ये 4, ख्याल में आई बात? देखो मनुष्य अपर्याप्त हो गए तो एक भी जीव हो सकता है या अनेक भी जीव हो सकते हैं, जो एक है वो उत्कृष्ट वाला है, या अनेक के लिए हम 2 लिखेंगे, अनेक है वो उत्कृष्ट वाले हैं, अनुत्कृष्ट वाले है ही नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अनुत्कृष्ट वाला एक है या अनुत्कृष्ट वाला अनेक है, ये 4 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, अब और कौन सी पॉसिबिलिटी है,
कोई नहीं,
उत्कृष्ट एक के साथ प्लस 2-2 का हम कॉम्बिनेशन लेना है, अनुत्कृष्ट का एक है या उत्कृष्ट एक के साथ अनुत्कृष्ट के अनेक है, ये 2 भंग हुए, 6 हो गए, ये 4, ये अलग अलग लिए 4, इसमें प्लस लेके जोड़ रूप लिए, एक जीव उत्कृष्ट का एक जीव अनुत्कृष्ट का, एक जीव उत्कृष्ट का अनेक जीव अनुत्कृष्ट के, अब ये उत्कृष्ट के
अनेक
लेना, उसके साथ फिर अनुत्कृष्ट का एक और अनेक लेना, उसके भी दो भंग हो जाएंगे। तो ये दो चार और ये सिंगल सिंगल चार, ऐसे आठ भंग हो गए। इस प्रकार नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट भंग भी चाहिए। ये हो गया जघन्य का चल रहा था ना, वो भी आठ आठ भंग होते हैं। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, पहले उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवन की अपेक्षा भोग से और चारों गतियों में जहाँ जितने भंग संभव है वे घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेने चाहिए। मात्र यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के स्थान में जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए। कथन तो वही का वही होगा। देखो उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट अनेक है, उसके कॉम्बिनेशन में लेना अनुत्कृष्ट का एक या अनुत्कृष्ट के अनेक। लिखना है आपको इस प्रकार नाना जीवन की अपेक्षा भंग विच्छेद समाप्त हुआ। अब इस अधिकार से सूचित हुए शेष अधिकारों की उच्चारणा का कथन करते हैं, यानी इतने ही अधिकार बताए हैं, अन्य जो अधिकार जो है जो सूचित हो जाते हैं इसी के कारण वो उच्चारणा में बताएंगे। भागा भाग दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? तो कहते अनंत वे भाग प्रमाण है। 26 लिए हो, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? कहते अनंत बहुभाग प्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं?
सब जीव तो अनंत ही हो गए ना।
नहीं, अभी सब जीव लेते हैं तो सत्ता वाले सब जीव लेना, क्योंकि सत्ता वाले है ही असंख्यात, तो उसके असंख्यात पे भाग प्रमाण। दो चार भी हो गए तो हम क्या कहेंगे, असंख्यात वा भाग कहेंगे ना, क्योंकि टोटल सत्ता वाले असंख्यात है। तो सत्ता वाले जीवों की अपेक्षा लेना सब। नहीं तो वो तो सत्ता वाले भी अनंत में भाग हो जाएगा। विभक्ति वाले सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है? असंख्यात भाग प्रमाण है। और अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है? असंख्यात बहुभाग प्रमाण। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। अकेले सामान्य तिर्यंचों को क्यों लिया भानुबेन? हाँ, अनंत है इसलिए। ऊपर जो बाकी कथन आया ना, अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग, ये कथन कहाँ घटित होगा? जहाँ निगोद इंक्लूडेड है वहीं पर होगा, बाकी समय तो असंख्यात की बात चलेगी। सत्ता वाले तो हमेशा ही है, उत्कृष्ट प्रदेश पहले हमेशा रहते नहीं ना, हमने पहले भी देखा था, कभी है कभी नहीं है। जब होते हैं, जब होते हैं तो कितने भाग होंगे ऐसा लेना। बिल्कुल, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कभी हो गए ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, कितने भाग प्रमाण है? तो है ही नहीं तो उसको क्या भाग कहेंगे? जब है तो कितने भाग प्रमाण हो गए? एक दो भी जीव हो गए या ज्यादा भी हो गए तो असंख्यात भाग है। विशेषार्थ, मोहिनी की सत्ता से युक्त कुल जीव राशि अनंतानंत है। ऊपर भी जो देखा है ना हमने 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति सब जीवों से, अब वहां कौन से सब जीव लेने हैं?
किसकी बात है?
ऊपर जो लिखा है ना ओग से 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के, तो सब जीव ने कौन से सब जीव?
26 की सत्ता तो सब
संपूर्ण जीव राशि ने।
नहीं नहीं संपूर्ण जीव राशि कैसे ले?
मोह की सत्ता वाले संपूर्ण जीव।
मोह की सत्ता कहाँ स्थान तक वाले लेने
पड़ेगा? 10वें गुणस्थान तक। तो पहले से 10वें गुणस्थान तक के जीव लेना वहां पर। क्योंकि सम्यक्त्व में हमने क्या अप्लाई किया? सम्यक्त्व की सत्ता वाले सब जीव। वैसे यहाँ भी मोहिनी की सत्ता वाले सब जीव ले लेना। या अपनी अपनी उत्तर प्रकृतियों में घटित करेंगे तो मिथ्यात्व की सत्ता वाले सब जीव लेना, आनंदानुबंधी की सत्ता वाले सब जीव लेना, एक एक में लगा लो अलग अलग। विशेषार्थ देखो, मोहिनी की सत्ता से युक्त कुल जीव राशि अनंत अनंत है। मोहिनी की सत्ता वाले लिए ना, उसमें से यानी उस राशि में से ओग से 21 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव अधिक से अधिक असंख्यात हो सकते हैं। चार संज्वलन और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव
संख्यात
अधिक से अधिक संख्यात हो सकते हैं। ऐसा क्यों?
सपक श्रेणी में होता है ना,
क्योंकि वो क्षपणा में हमने देखा उत्कृष्ट होता
पहले
है।
समय में जब
मनुष्य में होते हैं और वो भी क्षपणा में होते हैं। शेष सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले होते हैं, इसलिए यहाँ 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव अनंत वे भाग प्रमाण। भाग कितना है तो अनंत वा है, उसका प्रमाण क्या है? तो जो अभी हमने 21 की देखी थी वो तो असंख्यात है उसकी संख्या, और चार संज्वलन और पुरुष वेद की संख्या कितनी? वो उत्कृष्ट वालों की संख्या है। फिर भी भागा भाग में क्या कहेंगे? अनंत वा भाग है कहेंगे। असंख्यात के लिए भी कहा अनंत वा भाग है, संख्यात के लिए भी कहा असंख्या अनंत वा भाग है, क्योंकि ओरिजिनल संख्या सत्ता वालों की अनंत राशि है।
ये अनंत अनुमंदी के लिए तो 7वें गुणस्थान तक ही लेना पड़ेगा।
11वें गुणस्थान तक सत्ता है ना?
सत्ता।
एक अपेक्षा भी जो द्वितीयोपशम वालों में उसकी विसंयोजना करते कहेंगे तो उसके लिए 7वें तक सत्ता है। दो मत आते हैं। और मेरे ख्याल से जयधवला में सर्वत्र द्वितीयोपशम वाले की सत्ता नहीं है,
नहीं
है,
इसलिए मैंने।
अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव अनंत बहुभाग प्रमाण कहे हैं। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले ही लिखा ना यहाँ पर, उनकी सत्ता वाले है, फिर उसमें भागा भाग लेना। कुल जीव असंख्यात होते हैं, उनमें भी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले असंख्यात वे भाग प्रमाण हो सकते हैं। शेष अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रकृतियों की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले असंख्यात वे भाग प्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले असंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं। ये तो हमने भंग में तो देखा था सभी के सभी अनुत्कृष्ट हो सकते हैं, पर यदि हो गए तो कितने हैं? तो असंख्यात वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट है और बहुभाग वो अनुत्कृष्ट है। सामान्य तिर्यंश अनंत प्रमाण है, इसलिए इस मार्गना में ओघ प्ररूपणा बन जाने से उनमें ओघ के समान जानने की सूचना की। अब आदेश से नारकियों में 28 प्रकृतियों की सभी लिए एक साथ उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं? असंख्यात वे भाग प्रमाण। नारकी सबजीव, अभी नारकी सबजीव मोहिनी की सत्ता वाले की कोई बिना सत्ता वाले भी है?
सत्ता वाले की,
सब सत्ता वाले तो उनकी अपेक्षा से कौन से लेना है? उत्कृष्ट प्रदेशी भक्ति वाले कितने हो गए? असंख्या थे बात, और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग समान। ख्याल में आती बात है लक्ष्मी बेन? नारकी टोटल है ही असंख्यात, उसमें उत्कृष्ट वाले कितने हो गए? असंख्यात वे भाग प्रमाण हो,
तो संख्या की अपेक्षा संख्यात हो सकते
हैं। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट हमने देखा ना कभी एक भी जीव न हो, और होगा तो कभी एक जीव भी होगा, तो संख्या तो ऐसे भी घटित हो सकता है। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार यानी ऐसे ही स्टेटमेंट सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, यानी मनुष्य और मनुष्य अपर्याप्त, क्योंकि वो असंख्यात है ये घटित होता है, पर्याप्त मनुष्यों को नहीं लेना भी संख्यात है, इसलिए वहां संख्यात वा भाग और संख्यात बहुभाग के, और भवनवासियों से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में कथन करना चाहिए। ये अपराजित तक क्यों लिखा?
सर्वार्थ सिद्धि संख्यात है,
वो असंख्यात है, सर्वार्थ सिद्धि वाले संख्यात है। मनुष्य पर्याप्त मनुष्य ने, और सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में, सर्वार्थ सिद्धि के देवों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव, सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है? संख्यात विभाग प्रमाण, क्योंकि सभी जीव ही है वहां संख्यात, और उसमें उत्कृष्टों की संख्या बहुत अल्प होती है, तो संख्यात वा भाग, और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।
ये मनुष्य पर्याप्त ज्यादा है कि सर्वार्थ सिद्धि के लिए?
आप ही बताना।
सर्वार्थ सिद्धि के लिए ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि संचय की अपेक्षा, क्योंकि 33 सागर वाले आयु वाले होते हैं।
मनुष्य कितने हैं?
कितना थोड़ा?
29 अंक प्रमाण।
हाँ,
तीन बार बादल को गुणा करना और एक माइनस करना, हाँ, उतने हैं। अब उसमें मनुष्य नहीं ज्यादा है।
हाँ अच्छा, और ये तो,
और उससे भी वो
बावलिंगी तो बहुत कम होगी, तो
नहीं नहीं, सर्वार्थ सिद्धि में भी वो तो तीन गुना ऐसा कुछ लिया है मनुष्य ने, और उनके कुछ तीन गुना या सात गुना ऐसा उसका प्रमाण कहा था,
तो सर्वार्थ सिद्धि में ज्यादा कहा था ना। संचय की अपेक्षा वहां पे ज्यादा थी,
उसका एग्जैक्ट फिगर आपको वो संदृष्टि में मिलेगा या अपने समय ज्ञान चंद्रिका में मिलेगा? समय ज्ञान चंद्रिका में लिखा है उसको, सर्वार्थ सिद्धि के देवों के तीन, दो मत आते, एक तीन गुना और एक सात गुना वाला, मनुष्य नी से तीन गुना या सात गुना है, अधिक ही है, अधिक ही है। विशेषार्थ यहाँ जिन मार्गणाओं की संख्या असंख्यात है, उनमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव असंख्यात विभाग प्रमाण, और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण बतलाए हैं, तथा जिन मार्गणाओं का परिमाण यानी प्रमाण संख्यात है, उनमें उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव संख्यात वे भाग प्रमाण, और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण बतलाए हैं। शेष कथन स्पष्ट ही है। ये उत्कृष्ट का हुआ नारकियों में, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले। जघन्य का प्रकरण है, नारकियों में सब में लिए, हाँ सभी मार्गणाओं में लिए, आदेश में लिए, पहले ओग में बताया फिर आदेश में बताया, और इसी प्रकार सभी मार्गणाओं में जानना चाहिए। अब जघन्य में कहते हैं, जघन्य का भंग उत्कृष्ट के समान है, इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के स्थान में जघन्य और अजघन्य ऐसा कहना चाहिए। टोटल जीवों की अपेक्षा कहेंगे तो अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग प्रमाण, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए असंख्यात वा भाग, असंख्यात बहुभाग प्रमाण, आदेश में जहाँ जीव संख्या असंख्यात भी है उसको असंख्यात्व भाग कहेंगे, और जो संख्या संख्यात है उसको संख्यात्व भाग कहेंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार भागा भाग समाप्त हुआ। भागा भाग यानी कितने भाग प्रमाण है इतना बताना है। कोई अनंत अभाग अनंत बहुभाग, असंख्यात अभाग असंख्यात बहुभाग, इतना ही उसका स्टेटमेंट है। अब परिमाण दो प्रकार का है, तो जो अनंत वा भाग कहा या असंख्यात वा भाग कहा जो
कितने?
उसका प्रमाण कितना है? क्योंकि एक भी होगा जीव तो कहेंगे अनंत वा भाग, और असंख्यात भी होगी तो भी कहेंगे अनंत वा भाग। तो हमें एग्जैक्ट उसका प्रमाण क्या है वो यहाँ परिमाण अधिकार में बताएंगे, जिसको परिमाण अनुगम कहेंगे। परिमाण दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, यानी उत्कृष्ट में फिर जघन्य या उत्कृष्ट वो बात लगाएंगे वो अलग है। उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति में प्रमाण बताएंगे जीवों का प्रमाण। निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मिथ्यात्व 12 कषाय और 8-9 कषायों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो कहते असंख्यात है।
पुरुष वेद कुछ होगा,
अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने? तो अनंत है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो कहते संख्यात है। क्यों संख्यात है? हाँ, गुणित कर्मांशिक से आया है, क्षपणा कर रहा है। नहीं याद, हाँ गुणित कर्मांशिक से आया है, दो तीन तिर्यंश के भव करके मनुष्य में आया है, 8वें साल में दर्शन होने की क्षपणा की।
कृतकृत्य वेदक की लेना,
कृतकृत्य क्यों लेना? सम्यक जब मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में आया है, हाँ। अंतिम फाली तब सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट,
और सम्यक्त्व का जब भी सम्यक मिथ्यात्व का होता है
ना, सम्यक मिथ्यात्व का जब भी सम्यक्त्व में आता है, कृतकृत्य तो आगे चलकर होगा। जब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में ट्रांसफर होता है, संक्रमित होता है, तो 8 वर्ष की स्थिति बाकी है वहाँ सम्यक, तभी उसका उत्कृष्ट है। बाद में तो स्थिति कांडक और हो गया अंतर अंतर मूल से। उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, जब हमें जघन्य कथित करना है तो क्षपित कर्मांशिक से लाया पहले, फिर क्या किया था?
प्रथम ऑप्शन,
फिर प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त किया,
132,
फिर अनंत आनंदी की विसर्जना की, 2 बार शास्त्र सागर काल तक रखा,
और
लास्ट में जाके उसकी क्षपणा की।
उद्वेलना में जगन्य की बात है ना, उद्वेलना में जगन्य हो जाएगा ना, सम्यक तो और सम्यक मिथ्या
उद्वेलना
में होगा।
उद्वेलना में
लंबे काल तक सम्यक तो के साथ
दीर्घ उद्वेलना काल के, ये तो जगन्य की बात। हाँ
जगन्य है,
नहीं
उद्वेलना में
ले, यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही, वो जगन्य की बात सोच रहे हैं बीच में।
नहीं अच्छा यही बाइक जाएगा ना,
तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो संख्या थे, थोड़े हो ही नहीं करने वाले उत्कृष्ट वाले। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो असंख्यात है। 4 संज्वलन और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? संख्यात है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो अनंत है।
ये तो 108 ही हो गया ना उत्कृष्ट वाले, मैक्सिमम कभी पकड़ते तो ये सपक श्रेणी में होगा, तो एक समय में 108 जीव जाते हैं,
8 समय एक समय में जाते हैं, परंतु ये अलग अलग पॉइंट पर अलग उत्कृष्ट है हर एक का।
नहीं 108 जीव एक साथ जाते हैं, एक समय में जाए,
समय में जा सकते
तो उनकी उत्कृष्ट प्रदेश अच्छा वो वहाँ पे भी वेद और सब
108 जाएंगे फिर भी वेदों की असमानता हो सकती है घर में आती
नहीं मैक्सिमम हो सकते हैं तो 108 हो सकते हैं ऐसे मेरा पूछना था।
हाँ वो तो मैक्सिमम में अल्प बहुत में आएगी बात
आठ समय में 608 गए
मोक्ष में जाते हैं वैसे आपने वही बात उन्होंने श्रेणी में घटित की है
बाकी तो रहेंगे ना अभी
वो तो एक समय की बात कर रहे हैं जैसे एक समय में 108 जाते हैं सिद्ध दशा में एक समय में एक साथ
श्रेणी
चढ़ने वाले की बात उन्होंने उठाई एक समय में श्रेणी चढ़ने वाले
हमने देखा है कि 6 महीने 8 समय में 608
संचय की अपेक्षा अगर ले लेंगे तो उनके एक समय में वो उत्कृष्ट नहीं होगा उनका अनुत्कृष्ट में तो हम सबको एक साथ ले सकते उत्कृष्ट किसी एक समय में कितने हैं जीव तो जहाँ कहीं भी है श्रेणी में
क्योंकि हमने ऐसे देखा था कि छपक श्रेणी में भी 608 जीव 6 महीने 8 समय में छपक श्रेणी चढ़ते हैं तो वहाँ पे 8 समय की अपेक्षा पकड़ेंगे तो वो हो जाएगा ना इसीलिए पूछा मैंने
एट ए टाइम एक समय में कितने चढ़ते हैं तो अधिक से अधिक 108 परंतु वो 108 के पुरुष वेद हो सकते हैं ये भी
नहीं, संज्वलन लोक का तो होगा
और 4 संज्वलन से भी अगर चढ़ेंगे उत्कृष्ट वाले तो सभी क्रोध या मान या माया या लोभ से चढ़ने वाले हैं तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट नहीं करेंगे कि 108 होगी उत्कृष्ट एक साथ चढ़ेंगे भी किस कषाय से चढ़ते हैं उसमें वेरिएशन होगा किस वेद से चढ़ते हैं हो सकता है हो सकने की बात है
क्योंकि श्रीवेद और पुरुष वेद का हमने उसमें कुछ अंतर ज्यादा है उसके
बराबर है श्रीवेद में अंतर ज्यादा है हाँ। पुरुष वेद में तो 6 महीने का तो अंतर होता ही है अब विशेषार्थ पढ़ेंगे नहीं हम उसका स्टेटमेंट कोई रूल नहीं। हम नहीं बताएंगे शास्त्र में आता है तो हाँ उसको हम अर्थ उसका लगा सकते हैं पर अपने ओर से कोई नियम हम नहीं कह सकते ये बात कहना है क्योंकि हम देखते हैं ना कोई एक बात जो विचार करे तो दूसरा कोई लुक होल हमारा रह जाता है छूट जाता है होगा तो अच्छा ही है परंतु ऐसे ना स्टेटमेंट हम नियम बनाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए विशेषार्थ ओग से 4 संज्वलन और पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति शपक श्रेणी में होती है इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिमाण संख्या कहा है उन्होंने भी कोई संख्या कहने से तो उत्कृष्ट संख्या वो भी कह सकते थे फिर भी संख्या कहकर छोड़ दिया है सम्यक असम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति क्षायिक समय दर्शन की प्राप्ति के समय होती है ये बता दिया गया इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेश भक्ति वाले जीवों का परिमाण भी संख्या कहा है शेष कथन कथना हुआ सुगम है अब आदेश से देखेंगे आदेश से नारकियों में 27 प्रकृतियों की एक छोड़ दिया उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति विक्त हुआ विभक्ति वाले तो निकाल के भक्ति करो भक्ति करो यानी भक्ति लिखो प्रेरणा बिन ख्याल में आई विभक्ति है ना तो विक्त वाले हुआ है प्रदेश विक्त वाले वी रखना त के बदले विभक्ति करना भक्ति भक्ति
और त के बदले ती
हाँ तो 27 प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो असंख्यात है दोनों को असंख्यात का देखो उत्कृष्ट वाले कितने हो गए असंख्यात वे भाग फिर भी कितने हैं तो असंख्यात है। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो संख्यात है। ये कौन हो गए? अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए। देखो हमेशा जो कोई नारगी का स्टेटमेंट सातवीं में घटित करती, यहाँ पहली में कहा क्यों?
वहाँ पे
वो कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा वहीं पर लागू होगी, नीचे के नरकों में अलग अपेक्षा लगेगी। दूसरी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में 28 सबको एक साथ लिया, ऊपर 27 को लिया था। 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो असंख्यात है। दोनों ही असंख्यात है। भागा भाग में कहा था
असंख्यात,
अनुत्कृष्ट असंख्यात बहुभाग है और उत्कृष्ट असंख्यात वे भाग है। तो असंख्यात वे भाग यानी कितने? दो चार पांच, तो कहते उनकी भी अधिक से अधिक संख्या असंख्यात होगी। एक भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हमने भागा भाग में देखा था। भंग में क्या देखा?
एक भी नहीं हो सकता है उत्कृष्ट वाला, एक भी नहीं,
एक भी नहीं है। होगा तो एक भी हो सकता है,
एक भी हो
और ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ जो असंख्यात संख्या, यहाँ असंख्यात जो बताई है वो तो उत्कृष्ट संख्या बताई जाती। कभी ऐसा भी हो उत्कृष्ट एक भी नहीं हो, कभी ऐसा हो सकता है एक ही हो, और कभी अनेक हो। तो अनेक में कितने हो सकते? तो असंख्यात हो सकते हैं। यहाँ सामान्य से नारकियों में और पहली पृथ्वी के नारकियों में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि उत्पन्न होते हैं और इनका अधिक से अधिक परिमाण संख्यात होता है। इसलिए इनमें सम्यक तो प्रकृति की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिमाण संख्यात कहा है, शेष कथन सुगम है। इसी प्रकार आगे भी अपने अपने परिमाण और दूसरी विशेषताओं को जानकर सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीवों का परिणाम ले आना चाहिए। परिमाण चाहिए, परिणाम नहीं, परिमाण। उल्लेखनीय विशेषता न होने से हम अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। ये चिन्ह, प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए। ऑर्डिनरी दंड जिसको फुल स्टॉप कहेंगे। और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो अनंत है। ये ख्याल में आ रही बात? सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? बाले हुआ वाले जीव कितने हैं तो कहते संख्यात है। ये सम्यक्त्व की उत्कृष्ट कब लेना भानुबेन याद है? हाँ, कृतकृत्य वेद गुणित कर्मांशिक है, वो बाकी सारी उसमें कंडीशंस लगा लेना। अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। ये सम्यक मिथ्यात्व का याद आ रहा है? उत्कृष्ट कब लेना? हाँ, तिर्यंचों में तो क्षपणा नहीं है तो क्या लेंगे? हाँ, उद्वेलना में तो घटेगा
नहीं, वेदक समय दृष्टि को लेना है।
हाँ, बहुत अच्छा। देखो गुणित कर्मांशिक से आया है, तिर्यंच में आया है,
अंत में लेना
नहीं, शुरू में प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त किया, उत्कृष्ट लेना है ना।
हाँ, तो प्रथमोक्षम सम्यक तो के अंत में।
हाँ, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में क्या होता है? तो गुण संक्रमण के द्वारा उसकी प्रकृति तैयार होती है। तो प्रथमोपशम सम्यक के अंतिम समय में इसका उत्कृष्ट लेना, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट। ये पहले भी हुआ होगा ना अपना,
ऐसे नहीं ले सकते जिसने प्रथम में किया है वापस मिथ्यात्व में गया है, बहुत ज्यादा बंद किया है और पीछे वो वेदक समय दृष्टि होगा तो उसका ज्यादा संक्रमण हो जाएगा।
गुण संक्रमण नहीं होता, गुण संक्रमण समय प्रथम समय के काल में होता है। ये कहीं हमने लिखा होगा पहले उत्कृष्ट के प्रकरण में,
छठवीं बुक में
नहीं, छठवीं में तो है पर इसमें भी कहीं तो लिख लिया था। छठवीं पुस्तक में मिलेगा। कितने पेज में?
12वें पानो में, 12वें पेज में होगा। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का बंध
त्रिवेद के समान 11 पेज पर है देखो। गुणित कर्मांशिक से आकर पहले समय में है, पहले समय में नहीं प्रथम ऑप्शन सम्यक को इतना ही लिखा है नारकियों के बारे में मैंने वहां पर। गुणित कर्मांशिक से आया है और प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त किया। ऐसा ही लेना वहां पर। गुणित कर्मांशिक कहाँ होता है? नारकी के अंतिम समय में, वहां से तिर्यंश में उत्पन्न हुआ तो नेक्स्ट भाव में तो सम्यक तो नहीं होगा, फिर एकेंद्रीय में गया।
हाँ।
फिर वहां से तीर्यंश हुआ, संगी तीर्यंश हुआ पंचेंद्रिय
और
प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त किया तो उसके अंतिम समय में होगा। 11 पेज में पूरा नहीं लिखा मैंने अपने उसमें लिखा है, मैं छठी नंबर की पुस्तक की बात बता दिया। उत्कृष्ट देखना है ना, प्रथम समय में तो सम्यक्त्व की नहीं होगी। मिथ्या तो 16 कक्षा 9 कक्षांक की होगी, 10 पृष्ठ 10 छठवें पृष्ठ में। अनुत्कृष्ट का काल बताया है उसने। अच्छा वहां तो ओघ में बताया है, हम यहाँ तीर्यंश में देख रहे हैं। वहां तो ये घटित कर रहे हैं, वहां आपने 6 पृष्ठ पर जो बताया है कि वो बीच में पहले बीच में ही उत्कृष्ट करता है, जब उसकी क्षपणा चल रही है तो जब सम्यक तो प्रकृति में आता है या सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में आता है तब एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ, पहले अनुत्कृष्ट था बाद में भी अनुत्कृष्ट हुआ, वो बात वहां
देखी
उसकी नहीं, हम तो मार्गणा में देख रहे हैं। देखो आदेश में आपको अगर देखना है तो तीर्यंश में देखो, 11 पृष्ठ पर शुरू है तीर्यंश। वो अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल बताया वहाँ पर,
एक समय के लिए काल बताया वहाँ पे।
हाँ, परंतु मैं जो बता रही हूँ ना वहाँ गुणित कर्मांशिक से आया है और वहाँ आने पर उसने प्रथम ऑप्शन समय को प्राप्त किया है तो उसके अंत समय में होता है। हाँ, अभी हम आते हैं यहाँ पर। कहाँ गए अपना पेज
42 पेज,
हाँ 42 में आए हुए फर्स्ट लाइन। तो सम्यक मिथ्यात्व के कितने हैं, तो असंख्यात है हमने देखे थे, हाँ असंख्यात है, हाँ उसकी संख्या कम होगी, उनसे असंख्यात वे भाग प्रमाण होगी, फिर भी उसको असंख्यात कहा। पंचेंद्रिय तिर्यंश और पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त को में 42 पृष्ठ पर आए हम पहली लाइन में 42 में। पहली पृथ्वी के समान भंग है, पहली पृथ्वी के समान क्यों कहा, कृत वेदक है इसलिए। पंचेंद्रिय तिर्यंश योनियों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है, समय दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तकों में 28 प्रकृतियों की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव कितने हैं, तो कहते असंख्यात हैं। उत्कृष्ट की भी उत्कृष्ट संख्या ली है उन्होंने। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, देखो मनुष्य अपर्याप्त है तो सांसर मार्गना, परंतु उसमें भी कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं, तो असंख्यात हो सकते हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए विशेषार्थ। पंचेंद्रिय तिर्यंश और पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तकों में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं। अरे विशेषार्थ कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। अच्छा, इसलिए इनमें पहले पृथ्वी के समान भी हुआ भंग बन जाने से उनके समान जानने की सूचना की है, परंतु पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिनी जीवों में कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें दूसरी पृथ्वी के समान भंग बन जाने से उनके समान जानने की सूचना की है, शेष कथन स्पष्ट है। बाकी बात कर जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।
नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो वर्जनम नमो लोहे सुब्रह्मण्यम।